So this section is January, Mumbai, the Juhu, January 9th, 1977.
Mumbai, Juhu.
This chapter is beginning with discussing describing how Srila Prabhupada would go on his morning walks on Juhu Beach.
तो ये जो संदर्भ है श्रीला प्रभुपाद जब सुबह की सैर पर जाते थे उनकी जो वार्तालाप होती थी उसके संबंध में.
Those days Juhu was way out in the countryside. Nobody went there.
उन दिनों में जुहू जो शहर है उससे थोड़ा अलग हटकर था.
There were few apartment buildings, but it was undeveloped.
कुछ वहाँ पर फ्लैट्स या अपार्टमेंट बिल्डिंग थी परंतु वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं था.
So it is described here how Prabhupada would walk from the temple. This is a short walk, still. This is a short walk from the temple down to the beach. It takes only about, 10 minutes.
तो मंदिर से बीच तक का जो रास्ता है बहुत छोटा सा है. लगभग 10 मिनट लगते हैं पैदल पहुंचने में. तो प्रभुपाद वहां सैर पे जाते थे.
And so many of the wealthy people of Mumbai go walking in that area.
और मुंबई के बहुत ही घनाटे परिवारों के सदस्य भी वहां पर आते थे सुबह की सैर के लिए.
It's interesting also, the dogs also at that time go walking, the people go walking, the dogs also go walking.
और ये भी बहुत रुचिकर है, उस समय भी लोग अपना कुत्ता लेकर साथ जाते थे.
It's reasonable to conclude that those dogs were residents of the area in their prior life, and their habit was to go walking along that beach in the morning. So now they're in dog body, and now they're walking along the beach still.
तो से निष्कर्ष ये निकलता है कि जितने भी उस समय वहाँ कुत्ते घूम रहे थे, वो पिछले जन्म में वहाँ जुहू बीच पर रहते थे, परंतु उससे आसक्त होने के कारण उनको वो देह प्राप्त हुआ, और अब सुबह की सैर कर रहे हैं, परंतु एक अलग योनि में.
They're following the people that are walking on the beach, and it's at the same time that the people are walking on the beach, and they're going. I mean, they're just going up and down the beach along with the people, So this was their prior habit, you see.
तो उनके पिछले जन्म की आदत थी. लोग घूम रहे थे उनके पीछे पीछे कुछ कुत्ते भी इधर उधर भ्रमण कर रहे थे.
Now it's described here about Dr. Patel.
तो यहाँ पर डॉक्टर पटेल के विषय में आता है.
Dr. Patel was a close friend of Srila Prabhupada's.
डॉक्टर पटेल एक करीबी मित्र थे श्रीला प्रभुपाद जी के.
He was an older man, white hair, maybe about the age of this gentleman here, perhaps. I don't think he was retired. Maybe he was retired. I don't know if he was retired, but he was an older man.
तो वो थोड़े बूढ़े थे, उनके बाल सफेद थे, लगभग उनकी आयु जो यहाँ कवजी बैठे उनके समान होगी.
There are many recordings of these morning walks on Juhu Beach with Dr. Patel.
तो प्रभुपाद जी की जो वार्तालाप हुई जुहू में सुबह की सैर पे डॉक्टर पटेल से, इसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं.
Now Dr. Patel, he used to he knew a lot of shastra actually. He was a bit of a pundit.
और जो डॉक्टर पटेल को बहुत सारे शास्त्र पता थे, थोड़े पंडित थे वो.
So he would quote a lot of shastra, and he would purposely cook up something to argue with Srila Prabhupada about.
तो वो शास्त्रों से बहुत सारे श्लोक उदित करते थे और वो जान बूझ कर कोई ऐसा संदर्भ लाते थे कि जिससे श्रीला प्रभुपाद जी के साथ उनका डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट हो.
Which he didn't really disagree with Prabhupada, but pundit, so intellectual, so he would play act as if he disagreed with Prabhupada.
तो वह प्रभुपाद से असहमत नहीं थे, परंतु फिर भी क्योंकि वो पंडित थे तो प्रभुपाद जी के साथ वार्तालाप में वो ये रोल प्ले करते थे कि वो उनसे असहमत हैं.
So I used to go on those walks with Dr. Patel and Srila Prabhupada on Juhu Beach.
तो महाराज बता रहे हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से श्रीला प्रभुपाद के साथ और डॉक्टर पटेल के साथ वहाँ जुहू बीच पर सुबह की सैर पे जाया करते थे.
My god brother Yashimati Nandan, he was also there, and he was going on those.
और महाराज के जो गुरु भाई हैं यशोमति नंदन प्रभु, वो भी जाते थे.
It seemed to us that sometimes the Dr. Patel overdid it in his way he was you know, mock fighting with Prabhupada, but sometimes it seemed like he was going on to the offensive side.
तो कभी-कभार हमें ऐसा दिखने में लगता था कि जो डॉक्टर पटेल हैं, वो ओवरएक्ट कर गए हैं, कि वो इतना ज़्यादा आर्गुमेंट कर गए हैं कि अब थोड़ा अपराध शैली की तरफ बढ़ रहे हैं।
So I very distinctly remember that we would get very hot under the neck beads, you know, because we felt that he was going too far. You know, it seemed as though he was becoming offensive.
तो महाराज कह रहे हैं हमें वो अभी तक अनुभव याद है कि सुबह की सैर हो रही होती थी और जिस प्रकार से वो आर्गुमेंट कर रहे होते थे तो हमें हमारे अंदर बहुत ही क्रोध उत्पन्न हो रहा होता था कि हमें लगता था कि ये बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहे हैं
But in spite of a almost borderline arrogance, you know, no, but Prabhupada never took offense.
तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कभी भी अपराध के रूप में उसका स्वीकार नहीं किया
So he gave him a lot of instruction. I mean, they would talk to Shastra in a friendly way. They were close friends.
और श्रीला प्रभुपाद ने उनको बहुत सारे निर्देश दिए और वो आपस में करीबी मित्र थे
But he never surrendered to Prabhupada. He never surrendered.
परंतु डॉक्टर पटेल ने कभी वो शरणागत नहीं हुए श्रीला प्रभुपाद के
After Srila Prabhupada's departure, he expressed his regret that he did not surrender to Prabhupada and take initiation. Later, he expressed his regret.
श्रीला प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात उन्होंने इस प्रकार का पछतावा प्रदर्शित किया कि वो पछता रहे थे कि मैंने श्रीला प्रभुपाद को समर्पण करके उनसे दीक्षा प्राप्त नहीं की।
He was a nice man and certainly he was a Vaishnava, but we see that the jnani tendency it plays havoc with pure devotional service, pure bhakti. See, it's the jnani tendency is incompatible with pure bhakti. This is made clear by Srila Rupa Goswami himself.
तो वो सुकृत जन थे और वैष्णव थे, हालांकि उनका जो परिवेश है वो थोड़े ज्ञानी की तरफ ज्यादा था भक्ति ज्ञान के साथ जब मिश्रण हो जाता है इसके बारे में श्री रूप गोस्वामी भी चर्चा करते हैं
So everyone recite the verse along with me please tadviri pranipasnena paripasnena sevaya ubhikshanti te gyanam gyananastat vardashana So what is this verse approach to the spiritual master with submissive mood although they were playing they were you know play acting but actually in the final analysis he was not submissive so this is the downside of intellectualism downside because the proof is because he was not able to surrender to Prabhupada he should have become a disciple you know certainly I mean, he was little bit disciple but disciple means surrender
जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी को आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उनको शरणागत होना चाहिए उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए तो यहाँ पर हम देखते हैं जो डॉक्टर पटेल जो हालांकि पांडित्य थे तो उन्होंने कभी ऐसे शरणागति नहीं की तो ये एक विपरीत साइड है जितने भी लोग दिखने में लगता है जो बहुत बुद्धिमान है बहुत पांडित्य है तो वो शरणागत होने में उनको कठिनाई होती है और निश्चित रूप से अध्यात्मिक शिला प्रभुपाद को उनको शरणागत होना चाहिए था
Dr. Patel was a admirer of Srila Prabhupada.
और सुरक्षित स्थान पर अगर हम कहें तो जो डॉक्टर पटेल हैं वो एक प्रशंसक थे श्रीला प्रभुपाद जी के
But not exactly a disciple. He could not be counted as a disciple even though he was a friend of Srila Prabhupada. So if you look at the picture, Dr. Patel was thinking himself too much of an equal. Which is that is certainly subtle apparat. Certainly, you know, he should never in his heart have been thinking himself equal to Prabhupada just because he was an intellectual and pundit. He never should have been thinking like that for even a split moment.
और सटीक रूप से कहें तो वो उनके शिष्य नहीं थे और अपने आप को वो श्रीला प्रभुपाद के समान मानते थे ऐसा दिखता था बाह्य रूप से तो जो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ठीक नहीं था सिर्फ पांडित्य होने के कारण अपने आप को श्रीला प्रभुपाद जी के समान समझना या आयु में समान होने के तो ये इतना उचित दृष्टिकोण नहीं था
So on one of these walks, I was walking with Srila Prabhupada and Dr. Patel. Yashumati Nandan and a few other devotees.
तो महाराज बता रहे हैं कि उनमें से सुबह किसी जो सैर होती थी उनमें से एक सैर पे महाराज साथ में थे।
I don't know exactly what time that the Radharasa Bihari opened. In those days, they weren't in the big temple yet, huh?
1978.
Yes, but no, before 1978.
Deities were installed 1978. The temple opened
Yes, but this is before the temple opening. They were already installed. When they move deities to a new location, they reinstall.
The Maharaj is saying that I don't remember the date of when there Radha Ras Bihari Ji's vigra was established.
Just like in Tirupati, Radha Govinda are very senior deities in ISKCON.
जैसे कि तिरुपति मंदिर में वहाँ राधा गोविंद बहुत पुराने विग्रह हैं ISKCON में.
But when they built the new temple, then they were reinstalled in the new temple.
तो जब नया मंदिर का निर्माण हुआ, तो राधा गोविंद जी को पुनः स्थापित किया गया उनके नए स्थान पर.
This would be given in the Hari Bhakti Vilas.
ये हरि भक्ति विलास में इसका पुष्टि भी होती है. ऐसा कर सकते हैं.
Installed Radha Govinda years before.
Ashila Prabhupada ने राधा गोविंद की स्थापना कई साल पूर्व ही कर दी थी.
He installed Radharasa Bihari with great, you could say, intentionality.
और राधा रास बिहारी की स्थापना भी एक बहुत विशेष कारण से प्रभुपाद ने की, ऐसा आप कह सकते हैं.
Prabhupada made the point that this is when the property was under dispute still.
ये उस समय की बात है जब वहाँ का जो property है वो dispute में था.
And he was anxious to install the deities.
और शिला प्रभुपाद बहुत ही उत्सुक और चिंतित थे विग्रहों की स्थापना जल्द से जल्द करने के लिए.
His point was very clear.
उनका मत बहुत ही स्पष्ट था.
Once Krishna puts his lotus feet down there, boom, you know, then that's the end of the story. You're not going to get him out.
एक बार भगवान कृष्ण के चरण कमल वहां पर पड़ गए, boom, ये कहानी का अंत है.
Krishna claimed it. So Prabhupada was very adamant about this point that that's why I'm saying that it is not correct that they were installed in 1978. They were reinstalled in 1978.
तो Srila Prabhupada इस बात पर बहुत ही अडिग थे, इसलिए मैंने कहा कि ये जो विग्रह है 1978 में इनकी पुनः स्थापना हुई, परंतु प्रभुपाद ने इससे पहले ही इनकी स्थापना कर दी थी.
So there was just this tin roof shack with steel poles.
तो उसमें स्टील टिन की छत होती थी और स्टील के खंभे होते थे.
And that was the deity room only.
और यही छोटा सा डीटी रूम होता था.
Although the building, because the main building was still under construction.
हालांकि जो मुख्य इमारत है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी.
So one day when we came back from the walk and we came to the deity shed.
तो एक दिन हम सुबह की सैर से वापस आए और जो डीटी का शेड था वहां पर गए.
And it was some time before the deities doors were to open.
और दर्शन खुलने से कुछ समय पहले हम वहां पहुंच गए थे.
So Dr. Patel, in one sense, challenged, you know, because this was his attitude, you know, as a gyani, you know, gyanis, they like to challenge just for the.
तो जब डॉक्टर पटेल ने उन्होंने चुनौती दी और उनका जो दृष्टिकोण नहीं था, क्योंकि ज्ञानियों को तर्क करना बहुत ही पसंद है.
Once he declared on one of the morning walks, Dr. Patel declared, "Well, I have to say something contentious. You know, I have to start some kind of argument." These aren't his exact words, but more or less what he was saying was, "I have to say something that will." Rile you up a bit, you know, rile you, get you stirred up, otherwise you won't talk. You might not talk.
तो डॉक्टर पटेल ने एक बार सुबह की सैर पे कहा कि मेरे को ऐसा कुछ तर्क प्रस्तुत करना है कि जिससे आप वापस पलट कर उत्तर दें क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आप शांति से सैर करते रहेंगे मैं चाहता हूं आप बोलें
He was pushing Srila Prabhupada with argumentative words just to make him talk. So the Prabhupada would get stirred up and then he would talk. You see, that was his strategy.
So उनका strategy ये था कि वो कुछ ऐसा argument प्रस्तुत करते थे कि जिससे Srila Prabhupada बिल्कुल हिल के मजबूर हो जाए उसको उत्तर देने के लिए तो ऐसा उनका दृष्टिकोण था
So, Prabhupada was pointing out in here in this section, I'm just reviewing this because it's very nectarian. Prabhupada was pointing with his cane, he's saying, see how the sky, how clear and how nice everything is. Purnamidam. Oh, well, in this English version, this is just to right at the beginning, chant Hare Krishna and fight. The beginning of the chapter.
Srila Prabhupada ne chhadi upar karkar is prakar kaha.
Purnam says Srila Prabhupada, quoting Isha Upanishad, Purnamidam. Purnam Ada. Just see as the rising sun illuminates everything. Srila Prabhupada discourse speaking against the atheistic notion that the complex material creation has no creator.
Isha Upanishad se udharan dete hue Srila Prabhupada ne kaha Purnam Purnam Idam Purnam Ada. Srila Prabhupada ne nastikon ki vichardhara ke virudh bolte hue ki is jatil bhautik srishti ka koi srishta nahi hai. बताया कि जिस तरह उगता हुआ सूर्य प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करता है
So Srila Prabhupada continues to quote from Sri Isha Upanishad.
तो इस प्रकार उसी तरह यह संसार भगवान की सृष्टि है और इस प्रकार से उन्होंने ईशा उपनिषद से आगे कहा
And he quotes from Brahma Samhita also.
और उन्होंने ब्रह्म संहिता का श्लोक भी उद्धृत किया
So, Paramanu means smaller than the atom. Six Paramanus make one Anu. That is atomic dimension. You combine six Paramanus, so in that Paramanu also the Lord is there.
Paramanu ka arth hai Anu se bhi chota. Chhe Paramanuon se ek Anu banta hai. Anu ka yahi aakar hai. Aap chhe Paramanuon ko mila dein. उस एक परमाणु में भी परमेश्वर का निवास है
Now this is described in detail in the chapter of Srimad Bhagavatam entitled The Calculation of Time According to the Atom.
ये श्रीमद् भागवतम के अध्याय में बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया गया है जिसका इस अध्याय का शीर्षक है The Calculation of Time with Atom.
I was training one brand new devotee who used to live in Prajapatibhag and came to this temple and he had some question about atomic energy or something, I forget exactly, but he had some question.
The Maharaj bata rahe hain ki Punjabi Bagh mein wo ek naye bhakt ko prashikshit kar rahe the, jinke kuch prashn the, is atomic time calculations ko lekar.
So I did something very unconventional.
तो महाराज कह रहे हैं मैंने साधारणता जो किया जाता है उससे बिल्कुल हट कर कुछ किया
I advised him to read the chapter in Srimad Bhagavatam entitled The Calculation of Time According to the Atom.
तो मैंने उन भक्त को यही सलाह दी सुझाव दिया आप इस अध्याय को पढ़िए The Calculation of Time According to Atom.
Normally approaching the Srimad Bhagavatam methodically it is what's recommended.
साधारणतः ये सुझाव दिया जाता है कि जो प्रभुपाद की अन्य पुस्तकें हैं भगवत गीता है उसको पूरा करके आप श्रीमद् भागवतम पढ़ना प्रारंभ करें
But because he asked something about atomic energy, therefore I requested him to read this chapter, The Calculation of Time According to the Atom.
तो क्योंकि इस अध्याय में विस्तृत रूप से समझाया गया था तो मैंने उनको ऐसा सुझाव दिया आप डायरेक्टली ये भागवतम का इस अध्याय को पढ़िए.
So I might ask the question, well, why would you do that, given the fact that normally one is advised to approach the Srimad Bhagavatam methodically, that means chapter by chapter, first canto and so forth, very systematically. Generally this is recommended, then why would I give this advice just to read this chapter on atomic energy out of sequence?
तो कोई पूछ सकता है कि मैंने ऐसा सुझाव क्यों दिया क्योंकि अगर भागवतम को पढ़ने का तरीका भी यही है पहले स्कंद से प्रारंभ हो हर अध्याय को पढ़े और उस सीक्वेंस में चले तो मैंने डायरेक्टली उनको उस अध्याय को पढ़ने के लिए क्यों बोला.
The answer is because I knew means Krishna guided me to give this advice, unconventional advice to him, because I knew that by reading that chapter, it would skyrocket his faith in Srimad Bhagavatam and Siddha Prabhupada and Krishna consciousness by, 500% or more.
तो क्योंकि मैं जानता था मतलब कृष्ण ने मुझे प्रेरणा दी कि मुझे पता था कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद उस भक्त का श्रीमद् भागवतम में विश्वास श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विश्वास रॉकेट की स्पीड से 500% गुना बढ़ जाएगा.
So he read the chapter.
तो भक्त ने उस अध्याय को पढ़ा.
And my prediction came exactly true. He skyrocketed his faith in Prabhupada, ISKCON, Prabhupada's books, devotees, everything.
तो महाराज कह रहे हैं जैसे सोच रहे थे सत्य हुआ उस भक्त का श्रद्धा बढ़ी भक्तों के संग में भागवतम पर इस आंदोलन में प्रभुपाद के ऊपर.
So Dr. Patel said, so Krishna or Lord Vishnu made this material energy and then he entered into it. That is what the Vedas say.
Dr. Patel ne kaha usne ise banaya aur tab usne isme pravesh kiya. Ved yahi kehte hain.
So he knew the philosophy.
To wo darshan ko jante the.
Yes, said Srila Prabhupada. The Paramatma is there. The whole human life is meant for understanding all this and glorifying the Lord. And they are wasting their lives by imitating the hog.
Prabhupada ne kaha, haan, Paramatma har vastu mein hai. Pure manav jeevan ka uddeshya ye sab samajhna aur Ishwar ka gurgaan karna hai. Aur manushya suar jaisa jeevan bita kar use nasht kar raha hai.
Like the Bhagavatam says in this age of Kali, hogs, dogs, camels and asses. That is, so-called modern civilization, what is it actually? Bhagavad explains. Without dilution, Bhagavad explains. What is modern society? What is society? Absent Krishna consciousness, crystal clear. Bhagavatam, undiluted.
और श्रीमद् भागवतम स्पष्ट रूप से आधुनिक सभ्यता के बारे में समझाता है बिना किसी मिलावट के विशुद्ध मत प्रस्तुत करता है जिसमें बताया गया है जो आधुनिक सभ्यता है उसकी तुलना की गई है हॉग्स यानी सुअर डॉग्स कैमल्स एंड एसेस यानी गधे.
सो व्हाट इज सो कॉल्ड सिविलाइजेशन विदाउट प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस.
तो ऐसी सभ्यता का क्या आधार है जिसमें कृष्ण भावनामृत ही नहीं है.
हॉग्स डॉग्स कैमल्स एंड एसेस
सुअर डॉग्स ऊंट और गधे hogs, dogs, camels and asses.
Don't blame me, this is a direct quote from the Srimad Bhagavatam.
Maharaj keh rahe hain mujh pe dosh mat lagaiye, ye Srimad Bhagavatam ka shlok direct quote hai.
So they are wasting their life by imitating the hog.
To yahan Srila Prabhupada bata rahe hain aur manushya suar jaisa jeevan bita kar use nasht kar raha hai.
And then Srila Prabhupada again fell silent. So that's the way you would talk, and then you would walk for a while and just Hare Krishna, 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 Hare Hare, and silently chant japa.
और प्रभुपाद फिर मौन हो गए वे केवल मन स्वर में हरे कृष्ण मंत्र जपते रहे. तो ऐसा होता था श्रील प्रभुपाद किसी बात का उत्तर देते थे फिर थोड़ा वॉक करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए.
So actually, when you were walking with Srila Prabhupada, you would always be anxious for him to say something.
तो जब प्रभुपाद चल रहे थे तो डॉक्टर पटेल हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए व्याकुल रहते थे।
But I had the experience in a place called Portland, Oregon, in the western United States, above California. If you know, you know U.S. geography at all, above California on the westerns, adjacent to the coast, Pacific Ocean. There is a state called Oregon.
California से ऊपर एक वहाँ पर state है Oregon.
So there is a temple there.
वहाँ पर एक मंदिर है.
There was a temple, and when Prabhupada was physically present, no.
जब शिला प्रभुपाद इस धरातल पर थे, तब वहाँ पर एक मंदिर था.
So I was there. When Prabhupada was visiting that temple, because I was president at that time of Seattle, Washington, the next state up.
तो महाराज बता रहे हैं कि वो वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थित थे.
So I went on the morning walk as a temple president, so I was able to go on the morning walks.
तो महाराज जिस समय लॉस एंजलिस टेंपल के प्रेसिडेंट थे, तो वो व्यक्तिगत रूप से सुबह की सैर पर श्रील प्रभुपाद के साथ जाया करते थे.
So there was a very beautiful park.
तो वहाँ पर एक सुंदर पार्क था.
And we were walking in this park.
और हम उस पार्क में भ्रमण कर रहे थे.
Srila Prabhupada wasn't saying anything.
और श्रील प्रभुपाद कुछ भी नहीं कह रहे थे.
For a long time, so I don't know. We've been walking for more than half an hour, and
तो
still Prabhupada wasn't speaking anything.
आधे घंटे तक हम सैर करते रहे और प्रभुपाद जी ने एक शब्द भी नहीं बोला.
Perhaps we've been walking for 40 minutes, 45 minutes, and Prabhupada wasn't talking.
उसके 40-45 मिनट तक हम शांत रूप से सैर करते रहे और प्रभुपाद जी ने कुछ भी नहीं बोला.
So I got a very profound realization from that.
तो महाराज कह रहे हैं कि उनको बहुत ही गहरी अनुभूति हुई इस घटना से.
A kind of viparlamba, because I was feeling separation from Srila Prabhupada's vani.
तो महाराज बता रहे हैं उनको श्रीला प्रभुपाद वाणी से बहुत ही विरह की अनुभूति हो रही थी.
I had his vapu. I was with the Sakyamish avatar, the effulgent prema bhakti super devotee of Sri Radha and Krishna in his personal association in a beautiful park on a beautiful day.
तो महाराज बता रहे हैं हालांकि मैं वापू रूप से व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित था जो श्री राधा कृष्ण के परम भक्त शुद्ध भक्त के साथ एक सुंदर पार्क में एक सुंदर दिन पर उनके साथ था व्यक्तिगत रूप से.
But because he was not speaking anything, I was feeling separation.
परंतु क्योंकि वह कुछ बोल नहीं रहे थे तो मुझे विरह का अनुभव हो रहा था.
In other words, the vapu, the personal presence of the body, in spite of his exalted effulgence, but at the same time, if you didn't speak, there was a feeling of loss.
हालांकि वापु रूप से उनका जो शरीर बहुत ही दीप्तमान था, फिर भी क्योंकि वो वाणी नहीं थी, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मुझे किसी चीज की कमी बहुत खल रही थी.
Then at one point, we came to a tree, and there was a bird in the tree that was singing very sweetly.
तो हम एक वृक्ष के करीब पहुंचे और इस वृक्ष में एक पक्षी था जो बहुत ही सुंदर ध्वनि में गा रहा था.
So Srila Prabhupada pointed to the bird and said, "That is Krishna."
तो Srila Prabhupada ने उस पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, "ये कृष्ण है."
So does that mean the bird was an incarnation of Krishna?
तो इसका अर्थ क्या ये हुआ कि वो पक्षी कृष्ण का अवतार था?
What does that mean?
इसका क्या अर्थ हुआ?
I have to have a relay person, yes? Yes? Loud. Yes. Sound, yes. What else? The sound, because Krishna says, I am the sound of ether, but what else?
और क्या? इस कथन का क्या अर्थ हुआ? प्रभुपाद ने कहा ये पक्षी जो गा रहा है ये कृष्ण है, इसका क्या अर्थ हुआ?
Yes. Krishna is also sweet like that, yes. So, of course, these are correct answers. At the same time, brings to mind Krishna says in the Bhagavad Gita, where the wonderful things in material nature, they are manifestations of Krishna. Because there's no difference between Krishna's energy. We're not my bodies, it's a deep subject matter. But the opulences of material energy are manifestations of Krishna.
तो ये हमें इस भागवत गीता के श्लोक का स्मरण कराता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक प्रकृति में जो भी अद्भुत आप देख रहे हैं, इस भौतिक प्रकृति का जो भी ऐश्वर्य है वो भगवान कृष्ण ही है, क्योंकि एक रूप से भगवान में और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, हम मायावादी नहीं है, और ये बहुत गहरा दर्शन है.
For example, it says, Rasaham Apsukantaya, that I am the taste of water. So that doesn't mean the water is incarnation of God. It means that the water is a manifestation of His opulence that is non-different from Him. This point we have to understand.
उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो पानी का स्वाद है वो मैं हूँ. इसका अर्थ ये नहीं है कि पानी भगवान का अवतार है, हालांकि इसका अर्थ ये हुआ कि जो पानी का स्वाद, जो ये ऐश्वर्य है, वो कृष्ण के ऐश्वर्य का विस्तार है.
So everything that's great and wonderful in this world is a manifestation of Krishna's opulence.
और इस पूरे संसार में आप जितने भी महान और अद्भुत चीजें देखते हैं, वो भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य का ही विस्तार है.
Reality is therefore on the absolute plane and not on the relative plane.
तो जो सत्य है, वास्तविकता है, वो दिव्य धरातल पर ही है.
You understand, Prabhu? You do?
समझ पाए?
Hare Griva. Reality is on the absolute plane and not on the relative plane. So why am I saying that, Prabhu?
तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो सत्य है वो दिव्य धरातल पर ही है और इस भौतिक धरातल पर नहीं, relative plane पर नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं?
Because Krishna is on the absolute platform, yes. So his material energy is also part of the absolute truth. So in that sense, the material energy is also on the absolute plane, although we may speak of it as being a relative. So it's a deep subject.
तो बहुत ही गहरा विषय है. हालांकि हम कहते हैं भौतिक शक्ति, परंतु क्योंकि वो कृष्ण से ही, कृष्ण ही उनके स्रोत हैं. तो एक रूप से वो एब्सोल्यूट प्लेन पर है.
Because Krishna himself declares that my energies and I are not different, you know.
क्योंकि कृष्ण खुद ये घोषणा करते हैं, मैं और मेरी शक्तियों में अंतर नहीं.
So the singing, the sweet singing of the bird was not meaning that the bird was an incarnation of Krishna, but that the sweet singing of the bird was a manifestation of Krishna's opulence. This was.
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो पक्षी गा रहा था वो कृष्ण का अवतार है. इसका अर्थ ये है कि पक्षी जो इतना मधुर गीत उसके जीवा से निकल रहा था, वो कृष्ण के ही ऐश्वर्य का विस्तार था.
He didn't give any purport, but I'm just explaining why of the significance of the statement that is Krishna. The purport is that the sweet singing of the bird is manifestation of Krishna's opulence.
तो प्रभुपाद ने इस पर कोई तात्पर्य नहीं दिया था, ये मैं आपको अपनी तरफ से समझा रहा हूँ.
So then Prabhupada started talking again. Oh, the people, Prabhupada points, I mean the Leelamrita points out that as Prabhupada was walking, the elite of the area, they would be out on their morning walk also. And they were very polite and respectful. They could see Prabhupada was a sadhu. And so they said good morning and they greet them nicely. And Prabhupada would respond, would say, Hare Krishna.
तो अब समुद्र तट पर उजाला हो गया था और अनेक लोग जो सवेरे के भ्रमण के लिए निकलते थे अथवा अपनी दौड़ लगा रहे थे प्रभुपाद के सामने से गुजरते हुए उनका अभिवादन गुड मॉर्निंग कहकर करते थे उत्तर में प्रभुपाद सदैव हरे कृष्णा कहते
So, suddenly Prabhupada again began to speak.
और सहसा प्रभुपाद फिर बोल उठे
There's a very big conspiracy against us, he said.
हमारे विरोध बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है.
By the church, guess Dr. Patel.
Dr. Patel ने अनुमान लगाया गिरजाघर द्वारा.
Of course, now these days it may be the church, like in Russia. It is the church in Russia. And we cannot preach in Greece. Greece would be a wonderful place for spreading Krishna consciousness, but the same thing, the Greek Orthodox Church, the Russian Orthodox Church, their cousins, you know, Catholic. And so we cannot preach in Greece because they are too heavy, you know, too heavy, too demoniac.
So, आज के दिनों में ये बात सत्य हो सकती है, जैसे रशिया में गिरजाघर यानी चर्च द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया और ग्रीस देश में प्रचार करना हालांकि प्रचार के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है परंतु वहां प्रचार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पर जो चर्च है कई बार बहुत ही भारी उनका विरोध होता है
So, Srila Prabhupada replied, not by the church.
तो शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं चर्च द्वारा नहीं
And then Dr. Patel said, by society.
तो फिर समाज द्वारा
And Srila Prabhupada said,
Prabhupada ne gambhirta purvak kiya.
And then he added, now they are determined to cut down this movement.
Aur kaha, aapka is andolan ko nasht karne par dhrid nischay hai.
So this is January of 1977.
Ye January 1977 ki baat ho rahi hai.
I won't go into all the details, but when Prabhupada was on the physically on the planet, there were a lot of problems in the United States of the anti-cult movement, it was called. They were attacking ISKCON, saying we are a cult, and they were kidnapping devotees. There were a lot of sinister things going on, and that's why Prabhupada is, one of the reasons Prabhupada is saying, now they are determined to cut down the movement.
तो यूएस में उन दिनों में एंटी कल्ट मूवमेंट चल रहा था और इसलिए प्रभुपाद एक कारण ये भी है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है इस आंदोलन को नष्ट करने के लिए
सो जस्ट अ स्टेटमेंट नाउ दे आर डिटरमाइंड टू कट डाउन दिस मूवमेंट बट प्रभुपाद डिड नॉट एलैबोरेट एग्जैक्टली व्हाट ही वाज रेफरिंग टू
हालांकि श्रीला प्रभुपाद ने इस पे कोई विस्तार से नहीं बताया कि इस कथन से उनका क्या अभिप्राय है
But during this time period, the anti-cult movement in the United States was very active and they were doing some damage to our movement.
और उन दिनों में anti-cult movement बहुत ही शक्तिशाली रूप से हमारे आंदोलन के विरुद्ध कार्य कर रहे थे और इससे हमारे आंदोलन को बहुत हानि भी पहुंची
They said that We were brainwashed.
उन्होंने कहा कि हमारा brainwash हो गया है.
That's like you know hypnotized or just you know talked into some kind of belief system artificially by force. This was the propaganda they were making very heavy.
आप पर कोई जादू टोना हो गया है, hypnotized कर दिया गया है, या एक ऐसा कथन, एक belief. धारणा को जबरदस्ती बार बार बोलकर आपके दिमाग में बिठा दिया गया है
And the media was supporting the demons, so that made it cut into our preaching.
और जो मीडिया है वो भी इस बात को सपोर्ट कर रही थी इससे हमारे प्रचार पर बहुत प्रभाव पड़ा
But this brings to mind back in 1969, very early on.
तो ये 1969 में शुरुआत में भी
In those days, remember the devotees were recently quote flower children, you know. That's what I guess the media called the hippies of San Francisco flower children. Young people, innocent, putting flowers in their hair, you know, literally. I mean, they're really happy-go-lucky. I mean, the mood was like they wanted to be residents of Braj, but they didn't have Krishna, you know, that kind of thing.
तो उस समय जो हिप्पीज थे उनको फ्लावर चिल्ड्रन मीडिया कहता था क्योंकि जो उस समय हिप्पीज थे बालों में फूल लगाकर घूमा करते थे और महाराज बता रहे हैं ये उसी चीज की विपरीत छाया है कि कैसे ब्रज में हर कोई व्यक्ति इस तरह से सच कर चलता है परंतु उनके इस भाव में कृष्ण गायब थे कृष्ण केंद्र में नहीं थे
so, it was very innocent. Group in that sense, you know.
तो बहुत ही एक मासूम सा ग्रुप था कुछ लोगों का.
1969 Srila Prabhupada predicted.
और 1969 में प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी.
He told us, and we were, you know, the movement was very movement. It was very small. There was only a few hundred devotees.
उस समय आंदोलन बहुत ही छोटा था. कुछ सौ भक्त होंगे कुल मिलाकर.
Happy-go-lucky. You know, just dancing, chanting, going out Hare Nam Sankirtan.
और उनका पूरा जीवन शैली क्या होता था? संकीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, बाहर पुस्तक वितरण पर जाते थे.
The flower children become Hare Krishnas. The cream of the flower children became Hare Krishnas.
जो फ्लावर चिल्ड्रन जो महाराज बता रहे हैं उसका जो क्रीम था वो हरे कृष्ण में परिवर्तित हो गया
चरण से श्री प्रभुपाद वाज यू नो इट्स लाइक इफ यू हैव अ पॉट ऑफ मिल्क देयर इज क्रीम ऑन टॉप ऑफ द मिल्क एंड देन देयर इज मिल्क
तो उसकी जो क्रीम थी जैसे कि एक घड़े में दूध है दूध के ऊपर क्रीम है
सो श्री प्रभुपाद वाज टेकिंग द क्रीम ऑफ द हिप्पी मूवमेंट And making him into disciples.
And Srila Prabhupada, उस हिप्पी मूवमेंट की जो क्रीम थी उनको अपना रहे थे और उनको अपने शिष्य बना रहे थे
But formerly they came, I mean they were so-called Americans, you know, so they were, you know, formerly they were Christians and Jews. Before they took up hippie life, they were Christians and Jews.
हालांकि पूर्व उनके अगर जीवन में देखे वो क्रिश्चियन और ज्यूज थे हिप्पी बनने से पहले
So Prabhupada made a very ominous prediction in 1969. So we're just a bunch of innocent, just recently hippies, just recently flower children. Now we're dancing in the street, chanting Hare Krishna.
तो हम बिल्कुल हमारा मासूम सा पूरा जीवन होता था हम कीर्तन नृत्य और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे परंतु समय भी श्रीला प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की
So we couldn't imagine the import or the purport of a ominous you know the word ominous means you know foreboding statement by Srila Prabhupada prediction
to halanki us samay hum uska tatparya nahi samajh paye ki jo prabhupad ne hame satark karne ke liye bahut hi savdhan karne ke liye ye bhavishyavani ki thi
he said when the christians and jews find out that we are cutting into their camp, they will attack.
और उन प्रभुपाद ने कहा जब क्रिश्चियन और ज्यूस को पता लगेगा कि हम उनके कैंप में घुस गए हैं और भक्त बना रहे हैं तो वो हम पर हमला करेंगे
But we were just dancing in the street, Hare Nam Sankirtan, very peaceful. You know, people had no idea who are these strange people dressed in robes. You know, It was a very innocent time, 1969.
तो हम बहुत मासूम थे हमें इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था हम कीर्तन करते थे नृत्य करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और लोग हमें देखते थे कि ये बेडशीट लगाकर कुछ लोग निकल आए हैं गलियों में
Of course, this was America, you know, so then, you know, they couldn't understand anything about Indian culture. There were no Indians. There were a few. There were only a handful of Indians in the United States in those days.
और वो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उस समय भारतीय भी नहीं होते थे। गिनती से कुछ ही भारतीय होते थे वहाँ अमेरिका में।
So they couldn't understand Indian culture.
तो वो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं समझ
पाए. So some devotees were dressed in dhoti and kurta. In those days, devotees did not dress in Western clothing.
तो उन दिनों में जब भक्त धोती कुर्ता में वहाँ निकलते थे, उन दिनों में जो भक्त हैं, वो पाश्चात्य देश की जो वेशभूषा है, उसको नहीं पहना करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे.
Especially after initiation, it was.
और विशेष रूप से दीक्षा के बाद.
It was unthinkable.
आज के समय में शायद ऐसा अकल्पनीय है.
So people would make fun of us.
और लोग हमारा मजाक उड़ाते थे.
They say, "Hey, how come you're wearing sheets?"
और कहते थे कि तुम बेडशीट को किस प्रकार से पहना हुआ तुमने.
Well, that's the way it was in those days.
तो उन दिनों में ऐसा होता था.
Now when we go chanting the streets, they know something about Hare Krishna.
तो अब हम जब गलियों में जाते हैं कीर्तन करने के लिए,
as the newspapers,
लोग को जानते हैं हरे कृष्णा के बारे
में. The media said that Hare Krishna has become a household word. They said that.
और मीडिया ने कहा कि जो हरे कृष्णा है, ये घर घर का शब्द बन गया है.
So, whatever the media said, the devotees would faithfully report it to Srila Prabhupada.
और जो भी मीडिया कहता था, भक्त लोग बहुत ही वफादारी के साथ श्रीला प्रभुपाद को उसकी सूचना देते थे.
So when the media said Hare Krishna has become a household word, and when the devotees told that to Srila Prabhupada, said yes, this is very nice, very nice. He was very pleased.
और जब ये अखबार की जो क्लिपिंग है प्रभुपाद को दिखाई गई कि मीडिया कह रहा है कि हरे कृष्णा घर घर का शब्द बन गया है, तो प्रभुपाद बहुत ही प्रसन्न हुए. उन्होंने कहा,
So we have to preach in such a way that Hare Krishna is a household word all over the world more than ever before.
तो हमें इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए कि जो हरे कृष्णा है वो घर घर का मैं इसका गूंज हो, घर घर का शब्द हो पूरे संसार में पहले से भी अधिक.
So, Prabhupada said, I wanted to start this movement in India.
Srila Prabhupada ne kaha, main is andolan ki shuruaat Bharat mein karna chahta tha.
I requested so many friends, give me just one son.
Aur maine anek mitron se prarthna ki, mujhe bas ek putra de do.
But nobody agreed.
Kintu koi raji nahi hua.
They said, Swamiji, what will be the benefit of this if I make my son a Vaishnava or a Brahmana?
उन्होंने कहा, स्वामी जी से क्या लाभ होगा यदि मैं अपने पुत्र को वैष्णव या ब्राह्मण बनने दूं? अभी दर्शन खुले
थे. They did not give much importance to the movement. They are planning how to stop this movement in so many ways.
वे इस आंदोलन को बहुत महत्व नहीं देते. वे तरह तरह की योजना बना रहे हैं कि इस आंदोलन को कैसे नष्ट किया जाए.
So Dr. Patel said, the Americans are like that, always making propaganda.
सदैव श्रद्धालु भारतीय. डॉक्टर पटेल ने उत्तर दिया, अमेरिकी लोग ऐसे ही होते हैं, वे सदा कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं.
Dr. Patel, actually he didn't know all the details, but the media was attacking the movement.
तो डॉक्टर पटेल को हालांकि सारी डिटेल जानकारी नहीं थी, उस समय मीडिया द्वारा आक्रमण हो रहा था,
suggesting that we were something sinister or something evil.
और मीडिया इस प्रकार से आंदोलन को प्रस्तुत कर रहा था कि जैसे हम कोई बहुत ही झूठा या पापी कार्य कर रहे हों, या हमारे जो उद्देश्य है बहुत ही गलत हो.
So Srila Prabhupada said, there's good and bad in every place.
तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं.
Krishna says, Manishyanam Sahasreshu, out of thousands of persons, hardly anyone is interested in perfecting his life. This is Kali Yuga.
Krishna कहते हैं, Manishyanam Sahasreshu, हजारों मनुष्यों में से कठिनाई से एक मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण बनाने में रुचि रखता है, ये कलयुग है.
So Srila Prabhupada continued walking, but he didn't say anything more on the subject of the increasing opposition to this movement.
अभी दर्शन खुलने में 10 मिनट और हैं. वे टहलते रहे और श्रीला प्रभुपाद ने इस विषय में आगे कुछ नहीं कहा.
But now we see there are pockets of opposition, demoniac opposition. There are pockets of demoniac opposition like in the Russian Orthodox Church and other places around the world, but other places also the movement is being accepted. So the new battle of Kurukshetra.
तो ये एक नया कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जगह जगह जहां पर भी विरोध होता है वो युद्ध का समान है.
So Prabhupada was predicting basically that, you know, there will be a new confrontation between the devotees and the demons.
तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि एक नया युद्ध होगा भक्तों में और असुरों में.
But he personally wrote to me because the devotees during the so-called Cold War between Russia and the United States, devotees were very worried about nuclear war.
तो उस समय शीत युद्ध हो रहा था रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स में और भक्त लोग बहुत चिंतित थे न्यूक्लियर वॉर को लेकर.
And they were thinking maybe it will destroy this movement.
और उनको लग रहा था कि इसकी वजह से पूरा आंदोलन नष्ट हो जाएगा.
But he wrote to me personally and he told some of my gurus also, nothing can stop this Krishna consciousness movement.
तो श्रीला प्रभुपाद ने महाराज बता रहे हैं उनको व्यक्तिगत रूप से लिखा और उनके कई गुरु भाइयों को भी कि कुछ भी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता.
What he wrote to me, not nuclear war or whatever.
और मेरे को स्पष्ट रूप से लिखा ना ही ये न्यूक्लियर युद्ध या कुछ भी.
Nothing can stop this movement.
कुछ भी इस आंदोलन को रोक नहीं सकता.
All right, we'll stop there. Thank you very much. Any questions?
हम यहीं पर विराम देंगे. किसी का कोई प्रश्न?
Yes. The deities are about to open, so we have to be fast.
Hare Krishna. Maharaj, you touched the topic that Krishna's energy is at the same different and at the same similar to Krishna. So I fail to understand that. Can you please make me understand again?
I can understand the question. You need to read thoroughly in Prabhupada's books. In 30 seconds I can't explain how Krishna's energy and his energies are not different. In 30 seconds I can't explain. It's a deep subject matter that is discussed in, have you read the whole Bhagavad Gita? You have read the whole Bhagavad Gita, but there it is explained. Krishna's prakriti, kriyamanani, Krishna's energies are not different from him.
महाराज बता रहे हैं कि 30 सेकंड में आपको ये समझाना बहुत कठिन होगा, इसलिए आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अच्छे से अध्ययन कीजिए और भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है.
But at the same time, Krishna refers to him as my separated material energies.
कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण और उनकी शक्तियां एक भी है और अलग भी.
So it's a mystery.
तो ये रहस्य है.
You can't put a mundane twist on it.
इसपे आप कोई साधारणता ट्विस्ट नहीं कर सकते इसको.
For example, the Bhagavatam says and the Shastra says that when one becomes surrendered to Krishna under the direction of pure devotees of the Lord, then the entire Mahatattva or the entire dream world of the material existence shrinks down to the size of the amount of water and the footprint of a calf. In other words, about 1 inch.
तो भागवतम बताता है जब आप भगवान कृष्ण को एक शुद्ध भक्त के माध्यम से शरणागत होते हैं तो पूरा का पूरा भौतिक महत तत्व पूरी सृष्टि गाय के बछड़े का जो पैर का निशान है उसके अंदर जितना पानी आता है उतना छोटी हो जाती है. Reality बहुत ही आसानी से लांग कर पार कर सकते हैं.
Reality exists on the absolute plane, not on the relative plane.
But जो वास्तविकता है वो दिव्य स्तर पर उसका अस्तित्व है.
The reality is that Krishna is true, Bhagavan Swayam, and his energy is non-different from him. It's all absolute.
वास्तविकता कि कृष्ण स्थ भगवान स्वयं और उनकी शक्ति में अंतर नहीं है. ये दिव्य स्तर पर.
But at the same time, we are not monists. We're not like the followers of Shankar. You see.
और साथ में ही हम मायावादी नहीं हैं. ये शंकराचार्य के follower नहीं हैं.
But it's a very deep subject matter that I can't explain in 1 minute. Equal in quality, the jivas The souls are equal 78%. Nectar Devotion explains that Jiva can only have 78%.
The quality may be as 78%.
100% of the qualities of Krishna.
भगवान कृष्ण के 100% गुण जीव में नहीं होते.
Jiva cannot have 100% qualities.
100% गुण नहीं होते.
But 78% is a very high.
परंतु 78% बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा है.
So we have got those qualities, and Krishna consciousness means to develop them.
तो हमने इन गुणों के बारे में अब जान सकते.
Okay, we'll stop there. Jagat Guru Sri Prabhupada ki
जय. जय भक्ति माधव गोविंद स्वामी महाराज की. जय. श्रील प्रभुपाद की. जय.